الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء، صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جذبات کی وجہ سے کوئی رخ چپ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بات سمجھ میں جو جس کی وجہ سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ان باتوں میں ایک بات یہ آیت کریمہ جو بتا رہے وہ بھی ہے، اور وہ ہے الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہے یہ عورتوں کے اوپر کچھ کے قسم کے، یعنی وہ حکمران ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی بات ان کو ماننی چاہیے. آج کل کے دور میں چونکہ جذبات کو بھڑکانے والے چیزیں بہت زیادہ ہیں، میڈیا اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، اور بعض دفعہ یہ جذبات اتنے بھڑک جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بالکل واضح بات بھی اس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی. مثلا شہادت کے قانون پہ جس وقت بات ہو رہی تھی ضیاء الحق کے دور میں، تو ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ شاہ صاحب، یہ عورتوں کا کی شہادت عادی کیوں ہے؟ عورتوں کی شہادت عادی کیوں ہے؟ سوال ہی غلط تھا. سوال اس لیے غلط تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے. یہ معلوم کرنا ہمارے لیے نہیں ہے کہ قانون ایسے کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون اگر انسان نے بنایا ہو تو وہ جواب دہ ہے، وہ اس کی وجہ بتائے گا، لیکن قانون جس نے بنایا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. وہ تو قانون بناتا ہے اور قانون بتاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے بعد عمل کرنا ہمارا کام ہے، اور جو عمل نہیں کرتے تو پھر اس کا نتیجہ بھگتتے ہیں. تو وہ سوال ہی غلط تھا، لیکن میں اگر اس کو براہ راست یہ کہتا تو یہ مزید بگڑ جاتی، خراب ہو جاتی. تو اس وجہ سے میں نے اسے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ جن کی شہادت پوری ہے کیا وہ شہادت دیتے ہیں، یعنی مرد؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا تم پھر درمیان میں کیوں آنا چاہتی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے اوپر رحم کیا ہے اور تجھے مستور رکھا ہے اور تجھے مطلب جو ان چیزوں کے اندر نہیں لانا چاہتا، تو پھر خواہ مخواہ کیوں اس میں آنا چاہتی ہو؟ دوسری بات یہ کہ جہاں تمہاری ضرورت ہے وہاں تمہارے شہادت پوری ہے. تو لہٰذا ایسی باتوں میں پڑھنا ہی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ بات سمجھ گئی الحمدللہ. اب یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ کی بات میں بات کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کی بات میں بات کرنا یہ ممکن ہی نہیں. اس کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ حکمتیں ہمیں نظر نہ آئے. بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی حکمتیں ہمیں نظر نہیں آتی. اب آتی ہے تو بہت عرصے کے بعد آتی ہے، لیکن اس عرصہ میں بھی اس پہ عمل کرنا تو ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان اپنے آپ کو نقصان ہی دے سکتے اگر اس کے اندر شک و شبہ کرے. تو یہ قانون بھی ایسا ہی، الرجال قوامون علی النساء. بات بڑی سمپل ہے. ایک شخص پہاڑ کے چوٹی پر کڑا ہے، اور اس کو پہاڑ کی دونوں طرف کی باتیں، دونوں طرف کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور ایک شخص پہاڑ کے ایک طرف کھڑا ہے، اس کو دوسری طرف کی چیزیں نظر نہیں آتی. اب بتاؤ کس کی بات مانی جائے، جو چوٹی پر ہے جس کو دونوں طرف کی چیزیں نظر آتی. اب مرد باہر بھی ہوتا ہے اور اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے، باہر بھی اس کو جانا ہوتا ہے اور گھر کے اندر بھی ہوتا ہے. تو عورت صرف اپنے گھر میں ہوتی ہے، اور گھر سے باہر نکلتی ہے تو محفوظ نہیں ہوتی. इस वजह से उसको बहुत मोहतात होकर बाहर जाना पड़ता है, और बहुत सारी बातों में उनको मर्दों की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। अगर मर्दों की प्रोटेक्शन ना हो तो मुझे बताओ फिर वो, फिर ये मतलब बाहर अपनी हिफाजत कैसे करेगी। मिसाल मैं देता हूँ, ये जिसको कहते हैं बारात, हम कहते हैं बारात नहीं है, बारात नहीं है। हाँ जी, ये बारात है क्या चीज़? इसमें असल में होता ये था कि रात के वक्त शादियां असल में हया का दौर था। अल्लाह का शुक्र है अब तो मसला है नहीं, तो इस वजह से लोगों को समझ नहीं आती बात। हया का दौर था तो अक्सर डोलियां जो होती थी वो रात के वक्त ले जाते थे। अगर दूर जाना होता था तो रात के वक्त सफर करते थे। अब रात के सफर में जाहिर मतलब है कि डोली जाती थी तो महफूज होने का मसला होता था। तो ऐसी सूरत में कुछ मर्द उनके साथ उनको भेजने होते थे, और वो मर्द उन्हीं के होते होते जिनका जो दूल्हा होता था उनके होते थे। तो वो मर्द जो उनके साथ होते थे तो ये बन जाती थी, मतलब उसको बारात कहा गया। ये एक जरूरत की बात थी कि मतलब जाहिर है डोली ले जानी तो है, तो उसके साथ कुछ मर्दों को होना चाहिए बतौर हिफाजत। तो ये सिलसिला बन गया। तो ये कोई रस्म नहीं है, ये एक जरूरत थी। अब भी अगर जरूरत हो तो जायज है, अब भी अगर जरूरत हो तो जायज है, कोई मसला नहीं। लेकिन बिला जरूरत रोश दिन की रोशनी में अब सफर कुछ हो रहा होता है और पास ही घर होता है, उस वक्त भी बारात, ये कौन सी बात है? उस वक्त तो एक खुद ही इंसान अपने जना उसको ले जाए, बेटी को ले जाए। तो वो ये जो बात मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जिस तरह उस वक्त मर्दों की प्रोटेक्शन की जरूरत होती थी, तो कदम कदम पर औरत को मर्द की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है बाहर, और अंदर वो मलका होती है। बिल्कुल ठीक है, अंदर वो मलका होती है। मैं जब घर बना रहा था तो घर वालों को मैंने कहा किचन आपने डिजाइन करना है, क्योंकि इसमें आपका होता है, मैंने इसमें कुछ नहीं करना। जाहिर उसकी वजह ये थी कि काम में उनका होता है, तो जहाँ जिसका काम होता है तो वहाँ उनकी बात माननी चाहिए, हमें इसका तजर्बा ही नहीं। तो इस तरह मतलब ये है कि ये जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तो कोई मसला नहीं, और जहाँ ज़रूरत न हो तो बिला वजह ज़रूरत खाम खा क्यों काम खराब किया जाए। तो उसका ये बात है कि मर्द चूंकि बाहर भी होता है अंदर भी होता है, लिहाजा उसकी मतलब अगर अमीर बनाया जाए तो किसको बनाया जाए? क्योंकि अमीर बनाने की तो आप सब ने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया है कि दो आदमी भी हो तो सफर में हो तो मतलब यह है कि किसी एक को अमीर बना दें और अमीर के इत्तेहाद को वाजिब करा दिया। तो अब यह कि जिंदगी के सफर में कोई अमीर नहीं होगा, तो जिंदगी के सफर में भी अमीर मर्द को बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि हिफाजत हो औरत की और साथ साथ मसले हल हो सके, क्योंकि बाहर की बातों का औरत को इतना पता नहीं होता। तो लिहाजा फैसला उसको करना चाहिए जिनको दोनों तरफ की बात मालूम हो। तो इस वजह से जो है ना मतलब यह है कि मर्द को वो बनाया गया है कवाम। कवाम कायम करने के लिए होता है, मतलब यह है कि वो किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए होता है। तो ये इस वजह से फरमाया कि अर्रिजालु कवामूना अला निसा, मर्द जो है ना औरतों के ऊपर एक गुना हुक्मरानी रखते हैं, और ये हुक्मरानी उनके फायदे की बात होती है, ये हुक्मरानी उनके फायदे की बात होती है। वरना फिर यह है कि मसाइल मतलब जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। और हमने देखा है कि औरतों ने जब तनहा सफर करना शुरू कर लिया है तो बड़े मसाइल के शिकार हुई, बड़े मसाइल के शिकार हुई। ये असल में शैतान ऐसा निज़ाम बनाना चाहता है कि औरत और मर्द इंडिपेंडेंट हो जाए, और चूंकि औरत की फिर हिफाजत तो हो नहीं सकती मर्दों के बगैर, तो फिर ये कि वो जारे अब देखें ना, बिजली के तार है दोनों जरूरी है अगर पैरेलल चलते हो, किसी चीज में लगा दिया जाए तो उसको चलाएगा। आज ही दो तार, एक क्या होता है नेगेटिव एक पॉजिटिव, जरूरत है गाड़ी को चलाने के लिए दोनों तारों की जरूरत है, लेकिन तारों के तारों को डायरेक्ट मिलाया जाए फिर तो शॉर्ट सर्किट है। तो अगर ने कहा कि बंधन के साथ मिलाया जाए तो फिर तो गाड़ी चलेगी, और अगर बगैर इसके डायरेक्ट मिला दिया जाए तो फिर तबाही है। तो अब अगर ये है कि बाहर के जाएगी तो और जो मर्द होंगे उनके साथ डायरेक्ट इस किस्म की बात तो नहीं होगी, तो कैसे आप हिफाजत में आप अपने आप को महसूस कर सकती है? महसूस भले फिर तो हिफाजत नहीं होगी, फिर तो इस्तेहसाल होगा, फिर तो इस्तेहसाल होगा। हमारे साइंस की जुबान में स्टेटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है, तो स्टेटिस्टिक्स जो होता है ये असल में शुमारियात का मजमून है, और उसमें अंदाजे लगाने का बात होती है कि अंदाजे लगाए जाते हैं, उनके अंदाजों के कवानीन है, तो कवानीन पर अमल किया जाए तो काफी इसमें फायदे होते हैं। तो अब उसमें ये है कि मिसाल के तौर पर शैतान का काम यह है कि अगर एक शोर जालिम है तो उसको बुनियाद बनाकर सारे इज्दवाजियत के रिश्ते को बदनाम करेंगे, हालांकि बहुत सारी औरतें वो महफूज होती हैं, वो खुश होती है, लेकिन वो चंद जो होती है वो उनका आवाज को इतना उठाया जाता है कि सबको उस पे आ जाता है। अब देखिए औरत में शर्म हया, जो शरीफ औरत होगी उसमें तो शर्म हया होगी, वो तो बात नहीं करेगी, वो जो बेशर्म होगी वो ज्यादा बोलेगी। अब इस मसले में जो सामने की औरतें हैं जो सामने आ सकती है तो बेशर्म हो जाती है, जो बेशर्म हो जाती है वो बेहया भी होती है, जो बेहया होती है तो यही बोलती है, तो लोग समझते हैं शायद सारी औरतें ऐसी है। सारी औरतें ऐसी नहीं होती, वो जो घरों में हयादार बैठी हुई हैं उनसे किसी ने पूछा उनके बात क्या है? तो असल में यही पर तो यही जो शैतानी निज़ाम है जिसको हम दज्जाली निज़ाम कहते हैं वो इसी किस्म के काम करते हैं। इस वक्त मैं आपको क्या बताऊं, लोग आग में जल रहे हैं, जो यहां बैठे हैं उनको तो पता नहीं, जो यूरोप और अमेरिका में हैं उनसे पूछो कि इज़दवाजी जिंदगी का क्या हाल है और वहां की औरत क्या है। यानी यहां पर तो हुकूक नस्वां के नारे लगाए जाते हैं, और वहां पर औरत की तनख्वाह मर्द की तनख्वाह के बराबर नहीं हो सकती। हाँ जी, वो मैं लेडी डॉक्टर ढूंढ रहा था जर्मनी में अपने घर वालों के लिए, तो मिल नहीं रही थी वो दांतों की, तो मैंने गुस्से में अपने सेक्रेटरी से कहा कि कमाल है, इतना ज़्यादा मतलब समझते हो तुम अपने मुल्क को कि जो है ना मतलब इतना डेवलप्ड है और इतना तरक्की याफ्ता है, वहाँ हमें लेडी डॉक्टर मिल जाती, यहाँ पर मिल नहीं रही। तो उसने मुझे एक अजीब बात कही, उसने कहा लोग कहते हैं औरतें बड़ी खुश है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बात बिल्कुल यही है, असल में बात है कि उन लोगों से किसी ने पूछा नहीं ना, उनको पता है, लोगों को पता है। हाँ जी, तो ये जो चीज़ है मतलब हमारे यहाँ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ बचा हुआ है, अल्लाह का शुक्र अल्लाह बचाए, वो दिन न लाए जो वहां पर हो रहे हैं। वहां तो बच्चों का पता ही नहीं होता, बच्चों को पता नहीं होता कि बाप कौन है, और जाहिर मतलब है कि जब 18 साल से बड़े हो जाते थे पर माओ को पता नहीं कि बच्चे किधर है। वहां तो एक अजीब मसला बना हुआ है, इन बातों को तो लोग शायद समझते नहीं। हाँ जी, तो ये जो भी मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इन हालात को अल्लाह न करे यहां पर आ जाए, इससे बचने के लिए हमें जो शरीयत के कवानीन है उसके साथ स्टिक करना चाहिए, उनके साथ अपने आप को बांधना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, मामलात बड़े खतरनाक हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए मैं कर्ज करूंगा कि बेशक हमें समझ आए ना आए, कुरान की हर बात सच्ची है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सच्ची है, बेशक आप रिसर्च कर ले, नतीजा आपको वही मिलेगा, नतीजे में कोई फर्क नहीं आएगा, आपका जहन मजीद खुल जाएगा। इस वजह से कुरान में रिसर्च का और हदीस में रिसर्च का स्टाइल अलग होना चाहिए। हम साइंस में जब रिसर्च करते हैं तो साइंस सेकुलर है, उसमें हम हर बात को दोनों रुख समझ सकते हैं कि ये हो भी सकता है ये नहीं भी हो सकता। उस पे जब हम रिसर्च करते हैं आजादाना करते हैं। कुरान और हदीस में हम सिर्फ इस बात की रिसर्च कर सकते हैं कि आए ये अल्लाह की तरफ से है या नहीं है, आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया या नहीं फरमाया, इस बात की तहकीक करनी होती है। ये नहीं कि ये बात ठीक है या नहीं है, इसकी तहकीक नहीं करते हम। अगर ये साबित हो गया कि अल्लाह की बात है और या रसूल की बात है, फिर इसमें बात ख़त्म हो जाती है। फिर तो अगर आप इस पर तहकीक करें कि ठीक है ठीक नहीं, तो कुफर है, फिर तो कुफर है, फिर तो ये नहीं हो सकता। तो सिर्फ इस बात की तहकीक होती है कि आया अल्लाह पाक ने ये बात की है नहीं की है, कुरान में है या नहीं है, यह हदीस कुदसी है या नहीं है, और ये हदीस शरीफ सही है या नहीं है, इस बात की तहकीकात है सारी। बाकी इस बात की तहकीक नहीं होती कि बात सही है या नहीं है, ये बात हो ही नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि अल्लाह की बात हर एक सच्ची है, और अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात, हर एक बात सच्ची है। बस सिर्फ इस बात की तहकीक करनी कि ऐसा है या नहीं है, यानी आप अल्लाह की बात है या नहीं है, आप सल्लम की बात है या नहीं है। तो हम जब मानते ही कुरान की आयत है अर्रिजाल कवामून अलैन निसा, बस इसके बाद फिर दूसरी बात खत्म। इसके बाद जो मर्द ब्रॉड माइंडेड बनते हैं और उसमें कुछ आगे पीछे करते हैं वो भी खतरे में है, और जो औरतें इसके ऊपर शक करती है तो वो भी खतरे में है। हाँ जी, ये यहां पर हमारी दाल नहीं गलती, यहां पर हमारी बात नहीं चलती, यहाँ सिर्फ अल्लाह पाक की बात चलती है। हाँ जी, तो इस वजह से हम लोगों को इस बात में मोहतात होना चाहिए और इसको असल सेंस में समझना चाहिए। और असल सेंस यही है कि मर्द को अल्लाह पाक ने जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी उस पे डाली जाती है जो जिम्मेदारी को पूरा कर सके, जो उस पे डाली जा सके। ना तवा कंधों पे बर्फबारी बोझ डालेंगे तो क्या करेगी, वो तो नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, तो इस वजह से जो है ना, मतलब ये है कि हमें इस बात को ख्याल में रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, इस वक्त सूरत हाल ये है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में चूंकि इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि कितनी, मतलब जैन वो यानी वो औरतें आगे जाकर काम कर सकती हैं, तो नतीजतन सीटें मेरिट पर होती हैं। मेरिट पर होने की वजह से 70% ख्वातीन आ जाती हैं सीटों पर। अच्छा, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें तो अस्पतालों में औरतें डॉक्टर कितनी होती है और मर्द डॉक्टर कितने होते हैं। पास तो हो गए, डॉक्टर तो हो गई, कितनी 15-20% है, वो बाकी किधर गई? जाहिर उनकी शादी हो गई, अपने घरों को उन्होंने संभाला, उन्हें डॉक्टरी छोड़ दी। अब जो डॉक्टरी छोड़ी, तो डॉक्टरी छोड़ना सिर्फ नहीं था, उन्होंने पूरे एक सीट खराब कर दिया, पाकिस्तान से एक डॉक्टर को कम करवा दिया, जिसका नुकसान भुगतना है। हाँ जी, तो हर चीज को जज्बात में नहीं देखना चाहिए, एनालिसिस पे देखना चाहिए। हमारे एक दोस्त थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वहां रात के वक्त वो टिकट चेक कर नहीं था, तो उनने सुबह पूछा कि टिकट चेकर आपके रात के वक्त क्यों नहीं होते। कहते हमने कैलकुलेशन की कि टिकट चेकर होने से हमारा कितना खर्चा आता है और न होने से कितना खर्चा आता है, तो हमें चक्कर टिकट चक्कर न होने की वजह से ज्यादा फायदा हो रहा था, तो हमने टिकट चक्कर खत्म कर दिया। ये एनालिसिस, खामखा लकीर के फकीर नहीं होना होता है। हाँ जी, तो ये वाली बात होती है कि हमने जो है ना खामखा लकीर के फकीर नहीं होना। अब वहां पर ये चीजें नहीं है, यहां हमें देखे ना, हमें इन्वॉल्व करते हैं, ये होना चाहिए हकूक की रसवा। वहां पर वो क्यों वेजेस बराबर नहीं है, तो वहां पे ये कोई भी इस बात को नहीं उठाता कि आप क्या क्यों इस तरह नहीं है। मुझे बताओ, जितने ममालिक हुकूक की नस्वा की बातें करते हैं उनमें कितनों के वजीर आजम या सदर औरत है या वजीर औरत है, परसेंटेज बताओ। तो ये सारी बातें मतलब हमारे हकाक हैं, इन हकायक को देखना चाहिए, इन हकायक को देखना चाहिए। हम औरतों के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ एक कुदरती कानून की तशरीह कर रहे हैं, कुदरती कानून की तशरीह कर, ताकि लोग ईमान खराब ना हो। अरे जालू का वमुना लेने सा, ये हमारे अल्लाह पाक की बात है, तो हम लोग इसको सच्चा तो साबित करेंगे। तो इसके लिए हम इस किस्म की बातें करते हैं, वरना सही बात है कि औरतों को सबसे ज्यादा हिफाजत इस्लाम ने दी है। जब औरत को जानवर की तरह भी नहीं समझा जाता था, उस वक्त इस्लाम ने उसको बड़ी इज्जत का मुकाम दिया, उसके माँ होने को, उसकी बहन होने को, उसकी बेटी होने को, उसकी बीवी होने को, जो स्टेटस दिया वो इस्लाम ने दिया है। ये लोग तो उस वक्त जहालत पे डूबे हुए थे। हाँ जी, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह शरीयी तौर पर गिराना जो होता है उसमें औरत ज्यादा महफूज होती है और माशाल्लाह ज्यादा खुश होती है, शरीयी गिराने में, जहां पर इस्लाम पर अमल होता हो। जहां पर भी औरत को नुकसान हुई है वो लोग शरीयत पर नहीं चलते। जिनने औरत को दुख पहुंचाया है वो शरीयत पर न चलने वाले लोग हैं, चाहे जाहिर तौर पर वो आलिम क्यों ना हो। यानी इल्म तो और चीज होती है, अमल करना और चीज होती है। तो जो अमल नहीं करता तो उसके इस्लाम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो कवानीन का नाम है। अब अगर ट्रैफिक के कानून आप बहुत अच्छे बनाए लेकिन लोग इस पर अमल ना करें, तो आप ट्रैफिक के कानून को बदनाम कर सकते हैं कि ये गलत है, देखिए इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट अमल ना करने वाले की वजह से हुआ। तो जो इस्लाम पे अमल नहीं करते तो उसके पास उसको कानून का इलम भी हो, ये जो इशारों को क्रॉस करते, क्या उनको कानून का इलम नहीं होता? कानून का इलम तो होता है, बल्कि एन मुमकिन है कि ट्रैफिक की पुलिस वाले कानून को वो कर ले, कुछ इस तरह थे ना, तो उनने जो है ना वो गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, तो किसी ने उसे कहा भाई आप तो पुलिस वाले, तो अजीब बात उसने की, अल्लाह पाक माफ फरमाए। कहते रूल्स आर फॉर फूल्स, यानी कवानीन तो बेवकूफों के लिए, खुद अपने कवानीन, तो जो कानून को तोड़ रहे तो कानून में कसूर तो नहीं है, कसूर उनमें है जो तोड़ रहे हैं। अब उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया तो कानून की वजह से तो नहीं हुआ, कानून तोड़ने की वजह से हुआ है। तो जो इस्लाम पर अमल नहीं करता, औरतों के हुकूक का ख्याल नहीं रखता, तो वो इस्लाम का नुमाइंदा नहीं है, वो गैर इस्लामी तर्ज जिंदगी का नुमाइंदा है। उसकी वजह से नुकसान हुआ तो ऐसी चीजों की मुखालिफत होनी चाहिए जिससे नुकसान होता है। जो शरीयत पर चलने वाला है वो कभी जुल्म नहीं करता, जो शरीयत पर चलने वाला है कभी जुल्म नहीं करता। हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात फरमाई, फरमाया दीन पर चलने वाले लोगों के यहां औरतें ज्यादा जरी होती है, औरतें ज्यादा, ये ज्यादातर अच्छी उस वक्त रहती है जब इनके ऊपर जालिम हुक्मरान होता है, क्योंकि दबी रहती है, और जिस वक्त मतलब जो है ना वो जो इनके हकूक का ख्याल रखते हैं तो फिर उनके ऊपर सर पे चढ़ दौड़ती है, जज्बाती मखलूक है। आज तो ये बात समझ समझ में आ रही है ना कि जो लोग दीन पर चलते हैं वो इनका ख्याल रखते हैं, वो इनका ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको سمجھ کے توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله.